ओम शांति। 13 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के। हमारा जो योग है वो किसके लिए है, किसको एवर प्योर बनाना है? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, ना कि शरीर को शुद्ध बनाने के लिए। आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो। हमारा योग किसके साथ है? पवित्रता के सागर के साथ। और फिर पवित्र दुनिया स्थापन करते हो, क्योंकि जब तुम पवित्र बन जाते हो तो फिर दुनिया भी पवित्र हो जाती। प्रश्न, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? हमें स्वयं भगवान पढ़ाते, उस निश्चय की निशानी क्या होगी? भगवान हमें पढ़ाते हैं तो हमें निशानी क्या होगी? हम एक बाप के बच्चे हैं, हम सारे के सारे संसार की आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, और उस बाप से हमें क्या मिलता है, क्या वर्षा मिलता है? दैवी स्वराज्य मिलता है, देवी देवताओं वाला स्वराज्य, दैवी गुणों वाला स्वराज्य, जिससे हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते, स्व आत्मा का राज्य। ये पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है, हमने जो भक्ति की है वे अब पूरी हुई, वो अब क्या हुई? पूरी हुई। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। कौन मिला है हमें? स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। क्या करना होता है वारिस बनने के लिए? वारिस बनते हैं, वारिस बनेंगे कब? जब बाबा की पूरा पूरा श्रीमत पर चलेंगे, पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे तो वारिस बनेंगे। यदि हमने किसी और की मत या मन मत बीच में मिक्स की तो हम पूरे वारिस नहीं बन सकते। गीत, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दूर के मुसाफिर तो सब हैं, सब आत्माएं क्या हैं? दूर के, कहां से आई हैं? सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली हैं। ये भी शास्त्रों में है, ये भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती, जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है, मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूल वतन का है, ड्रामा इस स्थूल वतन का है, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं, कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है। चक्र मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है। एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है। 5 तत्वों का पुतला बनता है, 5 तत्वों का पुतला बनता है। उसमें आत्मा प्रवेश कर पार्ट बजाती है, उसमें आत्मा प्रवेश कर पार्ट बजाती है। तो दूर के वासी तो सब हैं, परंतु तुम निश्चय करते हो, मनुष्यों में निश्चय नहीं है। मनुष्यों में निश्चय नहीं है। बाप ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। उस नाटक में जो पार्ट बजाते हैं, उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है ना? उसमें तो हर एक अपना अपना घर होता है ना? वहां से आकर पार्ट बजाते हैं। यहां तुम बच्चे समझते हो, हम सब एक ही बाप के बच्चे, एक ही घर परम धाम में रहने वाले हैं। वे ब्रह्मा ब्रह्म महातत्व, ये आकाश तत्व, समझ में आया? जहां हम रहने वाले हैं, उस तत्व को कहा जाता है ब्रह्म महातत्व। नोट करके रखना, ये निर्णय करने में मदद मिलेगी। दूसरा है, ये है आकाश तत्व। ये जो कमरे में खाली जगह है, ये क्या है? आकाश तत्व। अब जहां आकाश होता है, वहां कुछ और भी हो सकता है। जैसे कुर्सी है, सोफा है, या एक कुर्सी और लेके आ जाए, तो आकाश तत्व कम हो जाएगा ना? यहां से आकाश तत्व बाहर चला जाएगा ना? नहीं समझ में आया?
क्या धरती पर टिकी हुई है सोफा चेयर?
सोफा चेयर धरती पर टिकी हुई है। अब जितनी यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ से हम एक कुर्सी को निकाल देते हैं, तो कुर्सी जितनी खाली जगह और हो गई ना?
वो तो आप उठ जाएंगे, वो भी जगह।
हाँ, यही समझना, यही तो समझना है कि यदि हम यहाँ से सोफा को बाहर निकाल देते हैं, तो यह खाली जगह और हो जाएगी ना? एक यदि सुई भी हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ खाली जगह बढ़ जाएगी ना? ठीक है कि नहीं? जो खाली जगह है, उसको हम आकाश कहते हैं। ठीक है। और ये जो तत्व है, ये सॉलिड जिसको हम कहते हैं, इसको हम पृथ्वी कह सकते हैं, जो सॉलिड है।
भाई नाम तो तीन है, जल सब और लव।
मेरे भाई ध्यान से समझो। नहीं, आप
आकाश खाली है, आकाश बिल्कुल।
तो 5 देखिए, 5 तत्वों से ये संसार बना है। ठीक है कि नहीं? 5 तत्व सारा संसार, 5 तत्वों से बना। भाई इधर ध्यान दो, समझेंगे तभी ना, क्योंकि नहीं तो ये पॉइंट आपको रह जाएगा। 5 तत्वों से ये संसार बना है, जिसमें से भूमि तत्व है एक। ठीक है? एक जल है, एक वायु है, एक अग्नि है और एक आकाश है। तो बाकी जो चीज है वो भूमि है, पानी पानी है, अग्नि अग्नि है। ठीक है? ये 5 तत्व जहां पर भी होंगे, अब जैसे हवा है, यहाँ पर हवा भी है, आकाश भी है, दो चीजें हैं ना। अब जितनी जगह हवा ने घेर रखी है उतना यहाँ आकाश भी कम हो गया, जितनी जगह हवा ने घेर रखी है उतनी जगह पर आकाश कम हो गया कि नहीं हो गया, ये भी सूक्ष्म बात समझने वाली है, ठीक है कि नहीं। तो जो चीज भी एक्स्ट्रा आएगी तो वो उतना दूसरे को कम कर देगी, परंतु ब्रह्म महातत्व भी एक छठा महातत्व है जो आकाश से भी अलग है, वायु से भी अलग है, अग्नि से भी अलग है, पृथ्वी से भी अलग है। जो आत्मा, जिसे हम क्या कहते हैं आत्मा, वो ब्रह्म महातत्व है। परमात्मा वो ब्रह्म महातत्व है, और जहां हम आत्माएं रहती हैं वो भी ब्रह्म महातत्व है, जिसे छठा तत्व कहा जाता है। समझ में आई ये बात, ठीक है नहीं। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु वायु को हम महसूस कर सकते हैं, आकाश को हम देख नहीं सकते परंतु आकाश को भी हम समझ सकते हैं। जहां कुछ नहीं वो आकाश है, जहां कुछ नहीं वहां आकाश है। और परमपिता परमात्मा ने कहा मैं आकाश से भी पार रहता हूं जहां कुछ नहीं, मीन्स जहां आकाश भी नहीं है, जहां आकाश भी नहीं है। बहुत ध्यान से समझना है इसको। अब क्या होता है कि जहां आकाश नहीं है वहां जरूर या तो पानी होगा, या तो हवा होगी, या तो अग्नि होगी, या तो पृथ्वी होगी, इनमें से कोई ना कोई होगा तो वहां आकाश नहीं है। इन पांचों चारों में से कोई नहीं है तो वहां आकाश है, और हम आत्मा उस आकाश से भी सूक्ष्म है, और हम आकाश में होते हुए आकाश में नहीं है, हम आकाश में होते हुए आकाश में नहीं है। हम जहां हैं वहां आकाश है या नहीं है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां अग्नि है या नहीं है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आत्मा को ये अग्नि जला नहीं सकती। हम अग्नि में भी चले जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम आत्मा पानी में चले जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पानी हमें गीला ही नहीं कर सकता, ठीक है नहीं। अगर हम इस पृथ्वी में से गुजर जाएं तो इस पृथ्वी में कोई सुराख नहीं होगा, हम इस टाइल में से गुजर जाएं तो टाइल में कोई सुराख नहीं होगा, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आत्मा जहां भी हो वहां हम आत्मा छठा महातत्व हो सकते हैं, ये बात हमको यहाँ समझनी है। ब्रह्म महातत्व ये है आकाश तत्व, ये है आकाश तत्व, यहाँ पाठ बजाते हैं, रात दिन होते हैं, इसलिए सूर्य चांद भी हैं। मूल वतन में ना रात होती है और ना दिन होता है, वहां कोई पाठ नहीं बजता। ये सूर्य चांद कोई देवता नहीं है, एक एक बात को काटते जा रहे हैं, जिसको दुनिया समझती आई कि सूर्य चांद देवता है, हाँ जी, हाँ ये देवता नहीं है, ठीक है। ये मांडवे को रोशनी करने वाली बत्तियां हैं, ये खेल है पृथ्वी पर, मांडवा कहते हैं गोल स्टेज के ऊपर किया जाने वाला सांग कहो, नाटक कहो, गीत कुछ भी कहो, मतलब वहां पर जिसके लिए गोल एक स्टेज बनती है जिसके ऊपर वो चारों तरफ घूम घूम करके अपना रोल प्ले करते हैं, उसको मांडवा कहा जाता था। तो उस मांडवे पर रोशनी करने वाली ये बत्तियां हैं, ये पृथ्वी गोल एक मांडवा है, इस पर हम सारे आत्माएं आकर पाठ बजा रही हैं, तो ये उस पर रोशनी करने की बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता, रात में चांद की रोशनी होती, अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है। अब ऊपर का मतलब ये नहीं कि मेरे सिर के ऊपर, ऊपर का मतलब है श्रेष्ठ अवस्था, परम अवस्था। ऊपर का मतलब क्या है, परम अवस्था। जैसे हम कहते हैं जी उसकी पोस्ट जो ना मेरे से ऊपर है, उसका पद मेरे से ऊपर है, अब कोई मेरे ऊपर थोड़ा बैठा है, वो अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूं, परंतु उसका पद उसकी पोजीशन मेरे से ऊंची है। ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार परमात्मा को भी हमने ऐसे ऊपर नहीं समझ लेना है, वो ऊपर है, वो जहां भी है उसका पद जो है ना हमारे से ऊंचा है। भगवान ऊपर में रहता है, भगवान को भी याद करेंगे हे परम पिता परम आत्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। कहां जाएगी? बुद्धि ऊपर जाएगी। बाकी इसके लिए कोई नहीं कि मैंने सिर ऐसे कर लिया तो ऊपर चली गई, क्योंकि हमें हमारे संस्कार बना हुआ है कि भगवान ऊपर है, इसलिए हम गर्दन ऊपर करते हैं, उंगली भी ऊपर कर देंगे। परंतु जब किसी बड़े व्यक्ति को हम कहें कि ये दीदी मेरे से बड़ी है, ठीक नहीं, ये भाई मेरा बड़ा है, तो हम उसके लिए ऊपर नहीं देखते, ठीक नहीं, उसके लिए हम सिर्फ समझते हैं कि ये भाई मेरा बड़ा है, चाहे वो वहां है या नहीं है, उसके लिए हमें कोई ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समझ है कि वो मेरे से बड़ा है। तो परमात्मा कहीं भी है, उसके लिए कोई ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं है, वो हमसे बड़ा है। तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी, भला हमारी बुद्धि ऊपर गई ना, हमने एक्सेप्ट किया ना कि वो हमारे से बड़ा है। आत्मा समझती है परंतु अज्ञान छाया हुआ है। आत्मा इस बात को समझती है परंतु अज्ञान छाया हुआ है, ये भी जानते हैं हम भी यहाँ के रहने वाले नहीं है। गाते हैं सारे, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। हमारा बाप वो है, मुख से ओ गॉड फादर कहते भी है, फिर कह देते सब फादर है, कहते गॉड फादर, फिर कहते सब फादर है। कैसे कहते सब फादर है? गॉड सर्वव्यापी है, तो इसका मतलब सब फादर है। बच्चों को समझाया है सब तो फादर है नहीं, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स है, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स है, ये ना जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते। तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो, निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है, लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना है। यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है, सर्वशक्तिमान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है, माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है। पांच विकारों पर जीत पाने की युद्ध है, युद्ध तो मशहूर है, बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं वो बात है नहीं, वे बात है नहीं, वो सॉरी वे बात है नहीं,
बात है
ही नहीं, कौरव पांडव जो दिखाए हैं वो कोई थे ही नहीं। ये रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है, ये लड़ाई जो है किसके साथ है? रावण के साथ, और ये बड़ी भारी युद्ध है क्योंकि रावण दिखता नहीं, हाँ नहीं तो रामचंद्र भाई ने गोली मार दी होती, वो तो दिखता नहीं है, ठीक है नहीं? ना बाबा दिखता है और ना रावण दिखता है, परंतु बाप फिर भी है, रावण तो कुछ है भी नहीं, रावण तो कुछ है भी नहीं। हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा पवित्र बने, और तो कोई भी रास्ता है नहीं सिवाय योग के, और जो भी योग सीखते हैं वे कोई पवित्रता के लिए नहीं, जो योग सीखते हैं वो कोई पवित्रता के लिए नहीं सीखते, वो योग सीखते हैं इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए, इस शरीर को तन को दुरुस्त रखने के लिए, मतलब मन को नहीं आत्मा को नहीं, वो स्वस्थ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वास्तव में सिर्फ इस शरीर को ठीक रखने के लिए योग सीखते हैं। हालांकि वो भी योग हमारे शरीर के किचड़े को बाहर निकालने का ही काम करता है, कि जब हम लंबे सांस लेते हैं तो हमारा कचरा बाहर निकलता है, और हम शरीर के अंगों में जो ज्वाइंट में कचरा फंसा हुआ है उसको निकालते हैं तो हम घुटनों के दर्द है, टांगों के दर्द है, या किसी भी जोड़ का दर्द है उसका इलाज होता है। और ब्लड को हम सर्कुलेट करते हैं तो हमारे ब्लड से भी कचरा बाहर निकलता है, क्योंकि तेज बाल्टी पानी की डाल दो घर की नालियों में तो सारी नालियां क्या हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। इसी तरह पानी ज्यादा पी करके हम थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, वॉकिंग कर ले, तो हमारी सारी नालियां क्या हो जाती हैं, साफ हो
जाती।
वे तो सब स्थूल योग है, वे सब क्या है, वे तो सब स्थूल योग है अल्पकाल के लिए। जितने भी स्थूल योग किए जाते हैं वो थोड़ा शरीर को स्वस्थ करने में हेल्प करते हैं, और ये रूहानी योग है एवर प्योर होने के लिए। पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं, और बाप कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है ये पतित दुनिया है, कोई से भी पूछो ये सतयुग है या कलयुग, तो इसको सतयुग कोई भी नहीं कहेंगे। सतयुग तो नई दुनिया थी, नई दुनिया थी, उसको गोल्डन एज, इसको आयरन एज कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है, ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सतयुग भी है तो कलयुग भी है, नहीं। नरकवासी माना ही नरकवासी। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्यों के लिए ही समझाया जाता है, जानवर थोड़े ही कहेंगे, जानवर थोड़े ही कहेंगे पतित पावन आओ। जानवर कभी भी नहीं कह सकते बेचारे कि हे पतित पावन आओ। कोई से भी पूछो तो कहेंगे ये नर्क है, क्या कहेंगे, ये नर्क है। भारत ही नई दुनिया स्वर्ग थी, भारत ही पुरानी दुनिया नर्क बनी है। भारत पर ही जोर देते रहो, दूसरे सब तो बीच में आ जाते हैं, दूसरे देश तो सारे बीच में आ जाते हैं। उससे हमारा तैलुक नहीं, हमारा धर्म ही अलग है। हमारा धर्म ही कैसे अलग है, बाकी जितने भी धर्म है वो देह के धर्म है, ये हमारा जो धर्म है ये आत्मा के लिए धर्म है। बाकी सारे क्या है, देह के धर्म, चाहे नमाज पढ़ना हो, चाहे दंडवत प्रणाम करना हो, तो चाहे कोई भी प्रकार के पूजा पाठ करने हो, वो सब स्थूल है। परंतु हमारा जो योग है वो ब्रह्म महतत्व का योग है। हमारा धर्म ही अलग है जो अब प्राय लोप है, जिसको कोई दुनिया वाले जानते ही नहीं। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए, ज्ञान सुनते हैं वे तो ठीक है, वे तो ठीक है, प्रजा बन जाती है, बाकी हम बेहद बाप के बच्चे हैं। ये निश्चय हो जाए, समझें हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए, अभी भक्ति पूरी होती है, अब भगवान स्वयं आकर मिला है, भगवान स्वयं आकर मिला है, उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंच पद पाते हैं, हम इतना ऊंच पद पाते हैं, जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वे तो एक बच्चा लेते हैं, जहां तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। तो गोद लेंगे तो एक आधा बच्चा लेंगे, दूसरा बच्चा भी नहीं लेंगे, झगड़ा होगा, ले लेंगे तो एक लड़का एक लड़की ले लेंगे, है नहीं। परंतु यहाँ तो ये क्या करता है, सारे सारे मेरे बच्चे बने, छोड़ना नहीं है किसी को भी। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले ना सके।
मेरा नाम बने तो वर्षा लेना,
भाई बनना तो सबको है, परंतु कितना बनेंगे उतना पाएंगे। अब द्वापर के लायक बने तो द्वापर का मिलेगा, त्रेता के लायक बने तो त्रेता का मिलेगा, कलयुग के लायक बने तो कलयुग का मिलेगा। जितना कोई पुरुषार्थ करेगा श्री मत पर ही नहीं चलते, मेरा कहना ही नहीं मानते। जिनको निश्चय हो जाता है वो तो कहते बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जिसका हाथ नहीं है उसका हाथ पकड़ लेते हैं, श्रीमत की उंगली पकड़ लेते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चों को और बच्चे समझाते हैं दूसरों को कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इतने सब बीके बने हैं तो जरूर निश्चय है। तो हम भी क्यों ना बने, लिखकर भेज दें कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़े ही हैं, हम कोई दूर थोड़े ही हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर हाजिर हैं, है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है। ऐसा परम पिता परम आत्मा जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता है वे सर्वव्यापी नहीं हो सकता, वे सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते, जबकि बाप की गैर हाजिरी में स्वर्ग में कोई भी दुखी नहीं रहता। बाप कहां गैर हाजिर होता है, मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं उनकी हाजिरी में। नहीं, ध्यान देना, पर लाइन को ध्यान से समझना है। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं, क्यों कहा? यदि परमात्मा सर्वव्यापी है फिर बताओ कि वो है, फिर उसके सामने उसके बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं, जबकि परम धाम में परमात्मा भी नहीं होता फिर भी वो सुखी होते हैं। क्यों? सुख धाम में सुख धाम में सतयुग में परमात्मा नहीं होता फिर भी सारे सुखी होते हैं ना, तो तब सुखी क्यों हुए? क्योंकि वो परमात्म श्री मत पर जीवन जीना सीख जाते। हाँ ठीक है, इसलिए मतलब परमात्मा जब हो फिर बताओ कि कोई दुखी कैसे हो जाता है। बाबा कहना क्या चाहता है कि परमात्मा क्या है, सर्वव्यापी नहीं है। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही अखेड़ा। हाँ, घोंसले का नया नाम अखेड़ा, ठीक है नहीं, तुम्हारे द्वारा ही अखेड़ा घोंसला बनवाते हैं, तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग को अखेड़ा बन रहा है, स्वर्ग का अखेड़ा स्वर्ग का घोंसला बन रहा है। और बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे, अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेंगे। ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठ जाना है, ये नहीं कि तुम घर बार छोड़कर यहीं बैठ जाओ, है नहीं, घर बार तो छोड़ना नहीं है। वे तो घर बार छोड़ते हैं, गुरु को भगवान समझते हैं, वे कोई जीते जी मरते नहीं है, तुमको तो जीते जी मरना है, फिर सतयुग में जीना है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्री मत पर चलना पड़े। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे, पहले तो एक हफ्ता भट्टी में बैठो, तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेगी, सब तो एक जैसे नहीं समझते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है, पता लग जाता है कि तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे। बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है, अब देखो प्रेम बच्ची सेवा पर गई है, जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आज्ञान का मतलब होता है सारा खर्चा करना, आवाभगत करना। बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए, परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है। क्या समझ में आया? प्रेम बहन हरिद्वार में, वहां पर जो ना सेवा करती हैं, तो प्रेम बहन सेवा करने गई, उन्होंने खूब लोगों से मिलवाया, ये हमारे ब्रह्मा कुमारी से आए हैं, सबने खूब स्वागत किया, आवाभगत किए किया, परंतु बाबा कहते एक भी निश्चय बुद्धि नहीं। कि इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाता है जिसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़े निश्चय हुआ कि बरोबर ज्ञान का सागर बाप पढ़ा रहे हैं, ये तो निश्चय नहीं हुआ ना। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है, जैसे ही बाहर गए फिर खलास। कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे, बल आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वे भी निश्चय बुद्धि नहीं, हाफ कास्ट कहा जाता है। निश्चय और संशय, अभी कहेंगे बाप पढ़ाते हैं और अभी कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पवित्र बनना अच्छा है, नहीं समझे, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले तो निश्चय चाहिए, गदगद होकर लिखे, खुश होकर लिखे, जैसे बांदेली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं, वैसे छुटेले कभी लिखते थोड़े हैं। जो बांदेली हैं वो लिखती हैं, पर तो जो छुटेले हैं वो नहीं लिखते। छुटेले कौन से होते हैं? कौन से? हाँ, छुटेले, जो छूटे हुए। छुटेले का मतलब है छूटे हुए, यानी बंधेले मतलब जो बंधे हुए, जिनको उनके परिवार वाले जाने नहीं देते, वो बाबा से ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे घर वाली तंग करती हो तो चाहे घर वाला तंग करता हो, जो बंधा है वो बंधेला, इकट्ठे नहीं, तो जो बंदेले होते हैं उनको ज्यादा प्यार होता है, जिनको पूरी छुट्टी है जाओ खूब मौज करो बाबा के सत्संग में जाओ, उन्हें बाबा से प्यार नहीं। ठीक बात है, ठीक ही है। वैसे छुटेले कभी भी कभी लिखते थोड़े ही हैं, बाबा लिख देते कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया। हाँ, साधारण प्रजा बनाई, वारिस नहीं बनाया, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं, जिनको पूरा निश्चय होता है वही बाप की जायदाद के वारिस बनते हैं। कोई बल निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते। निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, रोजाना मुरली भी सुनते हैं परंतु धारणा नहीं करते हैं, तो फिर जाकर क्या बनेंगे? विदा धारणा जितनी करेंगे वैसे पद मिलेगा ना, आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बने। दास दासी भी कौन से नंबर के, एक राजा के दासी, एक अमीर के दासी और एक प्रजा के दासी, एक दासियों के भी दासी। हम तो श्रीमत पर चले नहीं तब ये हाल हुआ, फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा। इनका ड्रामा में ऐसे ही कल्प कल्पांतर का पार्ट है, साक्षात्कार होना ही है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है, फिर कहेंगे भावी, फिर कहेंगे भावी। हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। ये तो बड़ा भारी स्कूल है, ये तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तिहान है, टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कैसा है। सब गैलप करते रहते हैं, आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा, आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे, घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे, जैसे शुरू में जाते थे। आप भी समझते रहते हो, बाप भी समझाते रहते हैं, तुम गफलत करते हो, श्री मत पर नहीं चलते हो। ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। भल तुम पूछो शिव बाबा, हम आपकी श्री मत पर चलते हैं, बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते, बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते हो, तब तुम्हारी तकदीर ऐसी दिखाई पड़ती है। समझा जाता है अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल भी जाए। कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं, भारत पावन था श्रेष्ठाचारी था जो अब भ्रष्टाचारी है। उन श्रेष्ठ देवताओं की महिमा तो है ना, बाप कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय, मैं आया हूँ देवी संप्रदाय स्थापन करने, ये देवी देवता धर्म है ऊंचते ऊंच। बाप ही पतित पावन है परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं पवित्र जरूर बनते हैं, हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं, हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं, कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले हैं। अब ये रावण राज्य खत्म होना है, इस रावण की नगरी को आग लगनी है, इस रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना बैठे हो, जो इस धर्म के होंगे वो समझते जाएंगे, नंबर वार समझते हैं। कोई को एक ही तीर जनक माफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं। जैसे जनक को एक ही तीर लगा, समझ में आ गया और वो समर्पित हो गया। वे कोई भी बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल ना सके, परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं, अपने घराने को ही बुला देते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है, काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए, काम बड़ा ही महाशत्रु है, यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। बाबा कहते हैं बच्चे इकट्ठे रहे, पवित्र बनकर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं, निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ, ये आपकी सेवा करता हूँ। सर्विस का समाचार लिखें, तब विश्वास रखूं कि ये सेवा करता है। सर्विस का सबूत दिखाएं, तब बाबा समझे इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और फिर ये भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे बहुत हैं, ऐसे नहीं, बाबा को रोज रिस्पांस देना पड़ेगा। नहीं, बाप है ही गरीब निवास, दान गरीब को दिया जाता है, ये भारत खंड गरीब है, भारत ही सौकार से गरीब हुआ है, ये किसको भी पता नहीं पड़ता। ये भारत ही अविनाशी खंड है, जहां भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था। जिस सुख धाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, कोई भी बहाना ना कर बाप की श्री मत पर चलते रहना है। सर्विस का सबूत देना है, सर्विस का सबूत देना है, हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंचते ऊंच घराना है, ये भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, निश्चय बुद्धि बनना भी है और बनाना भी है। वरदान, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सबको क्या देना है, सम्मान देना है, सर्व के माननीय भाव, सब आपको फिर क्या करेंगे, अपना मानेंगे। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बनो, जरा भी अहंकार ना हो, बन सबको सम्मान देते चलो, तो ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी, सर्व प्राप्तियां स्वतः अपने आप हो जाएंगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। जो सर्व को मान देता है, रिगार्ड देता है, उसका अपना रिकॉर्ड भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।